जीवन है हमारा भाई, यही शरण जीवन है हमारा। बोले अनंतानी सत्पुनि भगवान की, मूलनायक श्री चंदा प्रभु भगवान, मूलनायक श्री आदिश्वर भगवान, उपसर्गजेता श्री पाशनाद भगवान की, आचार्य गुरु परम तपस्वी श्री आदि सागर जी महाराज, आचार्य गुरु परम तपस्वी श्री महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य गुरु महाशुकवासी श्री सन्मत सागर जी महाराज, आचार्य गुरु भारत गौरव श्री कुंत सागर जी महाराज, बोला हिंसा मय विश्व धार्मिक। प्रिय बंधुओं, एक कवि ने बहुत सुंदर एक पंक्तियां कही हैं, आप सब लोग पूजा में रोज पढ़ते हैं उस कवि की पंक्तियां। उन कवि ने 8 लाइनों में सारा का सारा रहस्य भर दिया। सबसे पहले 2 पंक्तियों में मान कषाय का लक्षण बताया, दूसरी पंक्तियों में मार्दव का लक्षण बताया, और तृतीय 2 पंक्तियों में और चतुर्थ 2 पंक्तियों में घनत राम जी कवि महाराज ने बहुत सुंदर चित्रण किया है कि मान से उत्पन्न दुख हमें क्या क्या प्राप्त कराता है। हम देखें, हम विचारें, हम सोचें, हम जानें। उन्होंने सबसे पहले मान की परिभाषा दी, मान महाविश्वरूप करही नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। क्रोध को विश्वरूप कह करके मार्दव गुण को प्राप्त कराने के लिए वो हमें प्रेरित कर रहे हैं। इनसे कहना है या तो ये जल्दी चले जाएं या तो बैठ जाएं। फिर तो गानत राम जी कवि महाराज ने 2 पंक्तियों में बहुत सुंदर चित्रण कर दिया मान महाविश्वरूप। अभी अभी माता जी ने एक सुंदर भजन गाया था और उस भजन में यही बताया गया था कि यदि मान को का मर्दन करना हो, मान का नाश करना हो, तो हमें प्रभु की शांत मुद्रा का दर्शन अवश्य करना चाहिए। मान हमारा समाप्त हो, इसके लिए आज मैंने 2 ही पॉइंट दिए हैं, एक तो प्रभु भजन और दूसरा है गुरु भक्ति। क्योंकि संसार में 2 परम प्रेरक निमित्त हैं, हम कभी इनके सामने जाते हैं तो अपने आप हम मार्दवी गुण आता है, क्योंकि ये मार्दवी गुण के भंडार होते हैं। हमारे परम शास्ता, हमारे परम श्रेष्ठ, ये अनंत परमेश्वर की छवि, उस छवि को देखते ही कल्याण मंदिर स्त्रोतकार ने तो बहुत सुंदर लिख दिया, प्रभु आपकी भक्ति करने से एकमात्र मान कषायें नहीं, सारी कषायें ऐसी विलीन हो जाती हैं। कैसे विलीन हो जाती हैं? जिस प्रकार की एक मोर की बोली सुनकर के और सर्प चंदन के वृक्षों में चिपटे हुए हैं, वो भी अपने अपने बिलों में चले जाते हैं। परमात्मा की भक्ति एकमात्र एक ऐसी वस्तु है जो हमें मार्दवी गुण को धारण कराती है। मार्दव गुण कब जाता है? मार्दव गुण तभी जाता है जब यह व्यक्ति अपनी औकात भूल जाता है। मार्दव गुण कब आता है? जब इसे अपना वर्तमान याद रहता है, या अपने वर्तमान से यदि च्युत हो जाता है तो मार्दव गुण से भी च्युत हो जाता है, और वर्तमान में रहता है तो मार्दव गुण से कभी च्युत नहीं हो सकता। इसलिए सर्वप्रथम मार्दव गुण को प्राप्त करना है तो हमें वर्तमान ही होना होगा, और वर्तमान का मतलब ही है सम्यक चारित्र। वर्तमान का गुण ही है परमात्मा की भक्ति वर्तमान का गुण ही है संतोष। वर्तमान के कितने नाम हो सकते हैं? तो पहला नाम लूंगा तो मैं कहूंगा माद्री। वर्तमान का यदि कोई दूसरा नाम होगा तो वह संतोषी। हमारे आचार्य भगवंत यही तो कहते हैं, वर्तमान में संतोष रखो, वर्तमान को देखो। वर्तमान हमें अपनी औकात की याद दिलाता है हम कितने बड़े हैं। वही घनत राम जी कवि ने तृती दूसरी पंक्ति में कहा है, रूप कन विकाया भाग्यवस्ते देव एक इंद्री भया। देव एक इंद्री पर्याय को कैसे प्राप्त करता है? वो सोचता है कि मैंने 33-33 सागर तक के, 22-22 सागर तक के, और इतने श्रेष्ठ सुखों का उपभोग किया है, सब कुछ प्राप्त किया है, लेकिन वह श्रेष्ठ जो पर्याय मैंने प्राप्त की थी, अब मेरी माला मुरझा गई है, अब मुझे निश्चित है फिर से मां के गर्भ में जाना पड़ेगा, 9 महीने तक वहां बसना पड़ेगा और वहां बस करके नाना प्रकार के दुखों को उठाना पड़ेगा। इसलिए अपने मन में भविष्य की चिंता करके वह क्या करता है, अपना वर्तमान भी बिगाड़ लेता है। जीवन में मां के गुण को धारण करने के लिए सर्वप्रथम शर्त है हम वर्तमान को जाने। मैंने बहुत पहले एक कहानी सुनी थी। कहानी है, एक गांव में एक किसान था। वह किसान भगवान की बहुत भक्ति करता था। एक दिन एक रागी देव प्रसन्न हो गया। उस रागी देव ने कहा, बोल तुझे क्या चाहिए। उस रागी देव से उस किसान ने कहा, तुम समय पर पानी नहीं देते हो, समय पर धूप नहीं देते हो, समय पे सब कुछ नहीं करते हो, इसलिए सुनो, मैं जैसा चाहता हूं वैसा मुझे देना, यही वरदान आपसे मांगता हूं। उस रागी देव ने कहा, तदास्तु, जैसा तुझे चाहिए वैसा ही दूंगा। उस किसान ने सर्वप्रथम जल वृष्टि मांगी। जल की वृष्टि हुई और सुचारू रूप से हुई। उसने उसी समय प्रण किया कि अभी आए जल वृष्टि बंद हो जाए। बंद हो गई। उसने सोचा धूप निकल जाए। धूप निकल गई। धूप निकलने के पश्चात उसने खेत में बीज डाले, जोता, यथा समय यथा योग्य समय पे सब कुछ हुआ। फसल बहुत लहलहा गई, सब कुछ अच्छा हुआ, श्रेष्ठ हुआ, सुंदर हुआ। हाँ। तो उन्होंने सब कुछ यथा समय करके और बहुत सुंदर श्रेष्ठ और फसल की उत्पत्ति भी हो गई। फिर हुआ क्या, यथा समय में उसने उस फसल को काट भी लिया। काट करके उसने उस फसल को जब घा, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं उसको, बीज निकाला। जब वह बीज निकला तो उसमें से बीज बिल्कुल भी नहीं निकला, भूसा ही भूसा निकला। जब भूसा ही भूसा निकला तो वह परमात्मा से फिर कहता है, प्रभु तुमने यह क्या किया। वह रागी देव प्रसन्न हुआ और पुनः आया। उसने कहा, भैया तूने जिस समय जल मांगा उस समय मैंने जल दिया, जिस समय तूने धूप मांगी उस समय मैंने धूप दी, जिस समय तूने जो माना मांगा उस समय मैंने वह दिया, फिर क्या नहीं मांगा। तूने संघर्ष नहीं मांगा। जीवन में जब तक के संघर्ष ना हो जाए तब तक के बीज परिपूर्ण श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है, माद्री बनने के लिए, मार्दव उत्तम मार्दव गुण को प्राप्त करने के लिए हमें वर्तमान को समझना होगा। हमारा वर्तमान हमें क्या प्रेरित कर रहा है, और वर्तमान को पहचानने के लिए हमारे परम आराध्य श्रेष्ठ और परम पूज्य जगत श्रेष्ठ जगत हितकारी प्रभु पतित पावन की भक्ति करनी चाहिए। और प्रभु पतित भावपन की भक्ति करने से हमारे में परम मार्दव गुण का प्रवेश हो सकता है। आज तक जितने भी आचार हुए उन सब ने प्रभु की भक्ति के लिए हमें प्रेरित किया है। एक सुंदर प्रसंग अनुसार मैं कह रहा हूं, एक भक्ति मुझे याद आई, वह केवट की भक्ति है। केवट की भक्ति कैसी थी वह मैं आपको सुना रहा हूं। राजकुमार राम दशरथ महाराज की आज्ञा लेकर के वन की ओर अपने लघु भ्राता और अपनी स्वपत्नी के साथ जंगल की ओर गमन करते हैं। जब जंगल की ओर वे गमन करते हैं तो बीच रास्ते में गंगा नदी पड़ती है। उस गंगा नदी को नकने के लिए, उस पार जाने के लिए वे सहारे की खोज में जाते हैं और वो ऐसे घाट पे पहुंचते हैं जिस घाट पे केवट अपनी नाव को लिए हुए बैठा हुआ था। केवट राजकुमार राम को देख करके उठता नहीं है, स्वागत नहीं करता है, वह अपनी नाव पे यथास्थान बैठा रहता है। राम तो मार्दवी थे, परम मार्दवी थे, परम श्रेष्ठ गुण के धारी थे। उन्होंने केवट की ओर देख करके मुस्कुरा दिया, लेकिन लक्ष्मण बड़े तेजस्वी थे। शेष नाम के अवतार कहे गए हैं रामायण में, अग्नि संज्ञक थी उनकी, उनका माता गुण रहा नहीं। वे कहता है, रे केवट, तू प्रभु को देख करके भी विराजमान है, तेरे अंदर इतनी भी समझ नहीं है। केवट कहता है, प्रभु आज तुम मेरे शास्ता नहीं हो, मेरे इष्ट नहीं हो, मेरे पूज्य नहीं हो, आज तुम मेरे ग्राहक हो। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना थनैया पार राम केवट की नाव चले। वे राम से कहते हैं, राम तुम मेरे इष्ट नहीं हो आज। यही प्रसंग भक्ति के प्रकरण में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है। तुलसीदास जी एक रास्ते से गुजर रहे थे, बीच रास्ते में एक मंदिर पड़ा, उस मंदिर में वो घुस गए। उस मंदिर में जब उन्होंने प्रवेश किया तो वहां कृष्ण की मूर्ति थी, और कृष्ण की मूर्ति देख करके बोले, मैं नमस्कार करने वाला नहीं हूं, मेरा इष्ट तो वह है जिसके हाथ में धनुष बाण है, वह मेरा इष्ट है, वह मेरा परमात्मा है। और उस तुलसीदास पत्रिका विनय पत्रिका में उन्होंने, तुलसीदास जी ने लिखा एक पद बहुत सुंदर लिखा है कि मैं जब तेरे पैर पड़ूंगा प्रभु, जब तेरे पास धनुष बाण होगा और बाजू में सीता होगी और एक बाजू में लक्ष्मण होगा, तो मैं तुझे नमस्कार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। उसी समय उस विनय पत्रिका में लिखा उन्होंने कि भगवान वहां प्रकट हुए, अपनी भावना प्रकट हुई। वह केवट भी इसी प्रकार से और कहता है कि तुम अभी मेरे पूज्य नहीं हो, तुम अभी मेरे ग्राहक हो। देखो कितना वर्तमानी था वह केवट, और राम भी कितने वर्तमानी थे। उन्होंने कहा तुम मेरे ग्राहक हो, इसलिए उन्होंने विपरीत नहीं माना। लक्ष्मण पुनः अपनी गुस्सा को शांत करते हैं। इतनी बात हो जाने के पश्चात भी केवट अपने स्थान से उठता नहीं है और राम से कुछ भी पूछता नहीं है। लेकिन राम आगे चल करके कहते हैं, केवट मुझे उस पार जाना है, क्या तू उस पार ले जा सकता है? केवट कहते हैं, राजा राम हम बैठे इसलिए है, हमारी गद्दी इसलिए है, हमारी दुकान इसलिए है कि कोई ग्राहक आए, हम अपनी दुकान चलाए और पेट भरने को पैसा कमाए। उन्होंने कहा, बहुत सुंदर, अब हमें उस पार जाना है। तो बोले, उस पार ले जाने के लिए मैं बैठा ही हुआ हूं, लेकिन मेरी भी कुछ शर्त है, वे शर्त तुम्हें माननी पड़ेंगी। तो बोले, कौन सी शर्त है? तो पहली शर्त है कि प्रभु मैं तुमसे उतराई नहीं लूंगा। क्या नहीं लूंगा? उतराई नहीं लूंगा। दूसरी शर्त है, मेरे पास एक छोटी सी नाव है, इस नाव के अलावा मेरी कोई जीव का नहीं है, इस जीव का से मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का मैं पेट भरता हूं, और सुना है आपकी ये चरण रज बड़ी जादुई है। उस चरण रज के लगने से पत्थर भी स्त्री हो जाती है। तो मेरी ये नाव बड़ी नाजुक है, बड़ी कोमल है। इस नाव में यदि तुम्हारी चरण रज पड़ गई तो ये कहीं स्त्री ना हो जाए भगवान, इसलिए तुम्हारी चरण रज को पहले घिस घिस करके अलग करूंगा, बाद में मैं तुमको इस नाव पे बिठा लूंगा। बोलो शर्त मंजूर है ना। तीसरी शर्त है प्रभु, मेरे बाप दादे बड़े पापी रहे, उनको साक्षात प्रभु का दर्शन नहीं हुआ है, मुझे दर्शन हुआ है। और सच्चे पुत्र का यही अधिकार होता है कि पहले अपने वृद्ध जनों का, इस जनों का उद्धार करे, बाद में अपना उद्धार करे। इसलिए मैं अपने पूज्य पुरुषों का उद्धार आपसे करवाऊंगा। बोलो ये शर्त मंजूर है। यही आपकी उतराइए, आपको शर्त मंजूर हो तो आप अपने मुंह से हां कहिएगा और मैं आपको उस तरफ ले चलता हूं। अंत में क्या होता है, लक्ष्मण जी को बड़ी गुस्सा आ जाती है। लक्ष्मण कहते हैं देखो कैसा निकृष्ट आदमी है कि राम से भी, इतने बड़े पूज्य पुरुषों से भी ऐसी बात कर रहा है। वह अपने तर्कश से तीर निकालते हैं और अपने धनुष पे चढ़ा लेते हैं। जैसे ही धनुष पे चढ़ाते हैं वैसे केवट हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, प्रभु बरसाइए बरसात। बहुत अच्छा, आओ भाग आपके आपके तीर के चलाने से मुझे बहुत सुखद श्रेष्ठ, मेरा सपना पूर्ण होगा। आपके तीर चलाने से मुझे तीन फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है प्रभु कि मैं आपके तीर चलाते ही मर जाऊंगा और इतने बड़े पूज्य पुरुषों के द्वारा मैं मरूं, यह मेरा सौभाग्य होगा। पहला फायदा, सब लोग तो मरते समय राम का नाम याद लेते हैं लेकिन मेरा सौभाग्य होगा कि मैं राम के चरणों में मरूंगा। पहला फायदा। दूसरा फायदा, मेरे बेटे अभी बहुत छोटे हैं, उन बेटों के कंधों में इतना दम नहीं है, इतना बल नहीं है कि वे मेरी अर्थी को शमशान तक ले जा सके। इसलिए दूसरा फायदा होगा, मेरे बच्चे आपके सामने रोएंगे, मेरी पत्नी आपके सामने रोएगी। तो आपको दयालु है प्रभु, आपको दया आ जाएगी और उस दया का फल यह मिलेगा कि आप अपने कंधे पर अपनी मेरी अर्थी उठा करके और शमशान तक ले जाएंगे। तीसरा फायदा यह होगा प्रभु कि मेरी अनंत जन्मों की आस थी कि आपके हाथों से मरूं, वह मेरी अनंत जन्मों की आस पूरी होगी। और दूसरी बात यह होगी कि जिस गंगा में मैं रह करके मरना चाहता हूं, उस गंगा नदी की गोद में मैं मरूंगा। ये इतने सारे फायदे होंगे। आप अपना तीर चलाइए। वह अपने तीर को तरकश में डाल देता है पुनः और चुपचाप राम के पीछे खड़ा हो जाता है। अंत में राम स्वयं अपने मुंह से कहते हैं जा और मेरे पैरों का प्रक्षालन कर। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, परम मार्गी राम, श्रेष्ठ राजा राम, जन जन के मनोरंजक राम वहां खड़े हो जाते हैं। केवट कहता है मैं अकेले तुम्हारे चरणों का प्रक्षालन नहीं करूंगा, मैं अकेले कोई पुण्य लाभ नहीं ले सकता हूं, मुझे पुण्य लाभ लेना है, मैं अपनी पत्नी को बुलाकर के लाता हूं। वह दौड़ता दौड़ता अपने घर पे जाता है और आवाज लगाता है चलो आज अपने भाग्य श्रेष्ठ हुए हैं। वह उसकी पत्नी रोने लगती है, आंसू झरने लगते हैं। केवट पूछता है क्यों क्या हो गया। बोले आज मुझे दुख हो रहा है। बोले कौन सा दुख हो रहा है। बोले मेरे घर में एक पीतल की थाली भी नहीं है जिस थाली में हम अपने इष्ट अपने परम आराध्य राम के चरणों का प्रक्षालन कर सकें। केवट कहता कि आज मेरे पास सोना होता चांदी होता और भी अन्य धातुएं होती तब भी मैं उनमें अपने इष्ट राम के चरणों को नहीं रखता। बोले क्यों? बोले सोना और चांदी हीरा मोती जितने भी हैं ये सारे के सारे तो तिजोरियों में रखे जाते हैं 24 घंटे इनको साथ में नहीं रखा जा सकता है लेकिन मेरे राम के चरण तो मैं उस वस्तु में रखवाऊंगा जो 24 घंटे मेरे साथ में रहेगी जो 24 घंटे मेरे हृदय से मेरे शरीर से स्पर्श होता रहेगा। इसलिए मेरे पास तो मेरी नाव है उस नाव में ही अपने चरण इष्ट के चरण रजों को पधराऊंगा और अपनी पत्नी को लेकर के वह राम के पास आता है राम के चरणों का प्रक्षालन करता है। बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ते उनके चरण रज को लेते हैं। केवट का भक्ति देखो केवट की परम माधवी गुण देखिए। केवट सीता से कहता है कि आज तुम्हारा अधिकार इस चरण रज पे नहीं है इस चरण रज पे अधिकार परिपूर्ण मेरा है इसलिए क्यों में आइए जब तुम्हारा नंबर आएगा जब मैं तुम्हें चरण रज दे दूंगा नहीं तो आज चरण रज छू नहीं सकते हो। सीता लक्ष्मण का मुंह देखती है लक्ष्मण सीता का मुंह देखता है। सीता कहती है जब अपने बड़ों ने ही भिक्षा मांगी है तो अपन क्यों नहीं मांगेंगे। वर्तमानी बड़ा संतोषी होता है माधवी बड़ा संतोषी होता है। उस मारदा गुणधारी सीता ने लाइन में लग गई क्योंकि अपने इष्ट के रज को तो प्राप्त करना है ना इसलिए कोई प्रतिकार नहीं कोई प्रत्युत्तर नहीं। जानते हम भी जन्नत की हकीकत लेकिन दिल बहलाने को गायब ख्याल अच्छा है। वर्तमानी यही सोचता है वर्तमानी यही जानता है और यही सोचकर यही जानकर के परम संतोष गुण को धारण करता है। आगे तो और ज्यादा कहानी है लेकिन कहानी मेरा कहना उद्देश्य नहीं मेरा कहना तो यह बताना था कि मान को समाप्त करने के लिए प्रभु की अपने इष्ट की भक्ति बहुत जरूरी है। एकापि समर्थे हम जिन भक्ति निर्गतुम निवार्युतुम एक ही समर्थ है एक ही परिपूर्ण है एक ही श्रेष्ठ है क्योंकि घनत राम जी कवि कहते हैं करही नीच गति जगत में उस नीच गति को नाश करने के लिए एकमात्र कोई समर्थ है तो प्रभु की भक्ति अरियंत की भक्ति। एक कवि ने कहा है बिजली के धमाके में मोती पिरोता है कोई कोई बिजली के धमाके में मोती पिरोता है कोई कोई नरजन्म को पाकर सफल बनाता है कोई कोई। यूं तो रोज आते हैं रोज चले जाते हैं मेरे भाइयों लेकिन अरहंतों की भक्ति करके संतोषी गुण को प्राप्त करता है कोई कोई जीवन में वो परम श्रेष्ठ क्षण होते हैं वो ऐसे क्षण होते हैं जिन क्षणों में हमें परमात्मा की भक्ति में हम लीन हो जाते हैं। और परमात्मा की भक्ति में जब लीन होते हैं तो तुलसीदास जी ने कहा है जब तू था तब मैं नहीं मैं रहा तू ना है प्रेम गली अति साकरी तामे दुई न समाए। जब परम माधवी गुण की प्राप्ति होती है तो दो नहीं होते हैं एक होते हैं श्रेष्ठता उत्पन्न होती है और वह परम माधवी गुण तब प्राप्त होता है जब अपने इष्ट का गुणानुवाद हो। प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी तुम श्रेष्ठ हो मैं अपावन हूं प्रभु अपावन ही तो पावन के चरणों में जाएगा पावन कभी अपावन के चरणों में नहीं जाता है। आप पवित्र मान लेना ही परम पूर्ण लगता है और पवित्रता को जान लेना ही मार्दवी गुण है। पवित्रता को स्वीकार करना नहीं करना बहुत दूर की वस्तु है, पवित्रता को मान लेना साधक का परम कर्तव्य है। और वह पवित्र गुण को प्राप्त करने की जो साधना है उसका नाम ही साधकपना है, और वही हमारी उत्तम मार्दव गुण है। उस उत्तम मार्दव गुण को प्राप्त करने के लिए अभी साधना चल रही है, परम मार्दवी हुए नहीं है, परम मार्दवी होना है। तो किस प्रकार से होना है? तो हम अपने इष्ट की भक्ति करें। दूसरा नंबर मैंने दिया था आपको गुरु की भक्ति। गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने भगाया। आचार तरण तारण गुरु प्राण प्यारे, बंधु इन्हें विनय से सिर को झुकाकर। जीवन में श्रेष्ठता तभी आ सकती है जब इन परम मार्दवी के चरणों में ये अपवित्र मन झुक जाए। हमारे जैन शासन में तो गुरु का तीसरा नंबर है, लेकिन अन्यतर जैनतर समाज में गुरु का प्रथम नंबर है। जैनतरों ने कहा है कि परमात्मा की प्रतिमूर्ति गुरु, जैनतरों ने कहा है परमात्मा गुरु। हमारे यहां भी बहुत बड़े बड़े कवि हुए हैं जिन्होंने कहा ये साधु नहीं, ये चलते फिरते तीर्थ महान हैं। गुरु के चरणों की क्या बात कही जाए। एक भाई ने भजन गाया था, सरला बहन ने, दुनिया में मैं भूल गया वो पंक्ति, ऐसा कहां सबका नसीब है। तो ध्यान रखना जीवन में गुरु एक ऐसा शब्द है जो गुरुतर अवस्था को प्राप्त करा देता है, परम मार्दवी अवस्था को प्राप्त करा देता है। मैं इस परम मार्दवी अवस्था को प्राप्त करने के लिए परमात्मा की भक्ति के पश्चात हम गुरुओं की भक्ति करें। हमारे छह औषधियों में भी यही आया है, देव पूजा गुरु उपास्ती। देव की पूजा गुरु की उपास्ती कैसे करें? गुरु की उपास्ती ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। तो सबसे पहले आप पवित्र मान करके गुरु की उपासना करें, अपने आप को निम्न मान करके गुरु की उपासना करें, तब हम गुरु की सच्ची उपासना कर सकते हैं। गुरु तो पिता के तुल्य होते हैं, तमैव माता तुमैव पिता, तुम्ही भ्राता तुम्ही बंधु, तुम्ही जग के हो कर्ता प्रभु। जग के कर्ता हमारे जैन शासन जग कर्तित्व अधिकार को स्वीकार नहीं करता, कर्तित्व पने को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन भक्ति में कर्तित्व पने को भी स्वीकार किया है। विघ्नो गए प्लयांति शाक्नि भूत पन्नगा, विशो निर्विष्टाम याति स्तुई माने जिने स्वरे। लेकिन ये भक्ति बस, और हम तो जब भक्ति करने के लिए बैठे हुए हैं तो हम तो यही कहेंगे कि जगत के कर्ता भी प्रभु आप हो। ऐसा यदि नहीं मानेंगे तो परम मार्दवी गुण भी प्राप्त नहीं हो सकता है। मेरा तो यही मानना और जानना है कि जब जब मेरे मन तुम्हें लघुता आ जाए तो तुम कुछ प्राप्त कर सकते हो। तुम में लघुता ना आ पाई तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। रही बात देखने और दिखाने की, तो लघुता प्रकट नहीं की जा सकती है। लघुता अनुभव अनुभव गम्भ है। रावण मान से मरा, यह हमारे पुराण कहते हैं, इतिहास कहता है।
बाहुबली स्वामी को एक वर्ष तक के तपस्या की केवल ज्ञान नहीं हुआ। इसका कारण आम काज का ही हमारे इतिहास कहते हैं, हमने देखा नहीं, हमारे पुराण इस बात का वर्णन करते हैं। लेकिन सच मानो आज भी वर्तमान में वही है। हम थोड़ी सी भी अपनी ओर दृष्टि निहारें, हमारा पतित पद पतित क्यों हुआ है, क्यों भी हम में लघुता नहीं रही।
मंत्रिकाल विषयम सालोकमालोकितम साक्षादीन यतः स्वयं करतले रेखात्रयम सांगुलि रागद्वेष भयामयांतक जरा लोलत्व लोभादयो नालंब्यत् पदलंगनाय महादेवो मया वंदिते। जिबुल ग्यारह श्री पार्श्वनाथ भगवान, जिबुल ग्यारह श्री महावीर भगवान, जिबुल ग्यारह श्री सम्मेश शिखर सिद्ध क्षेत्र की, जिबुल ग्यारह श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, गुरु परम पूजाचार्य श्री आसाग जी महाराज की, गुरु परम पूजाचार्य श्री संसाग जी महाराज की, जिबुलो परम पूजाचार्य श्री महाविकृति जी महाराज की, जिबुलो अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्माओं, आज दस लक्षण पर्व का दूसरा दिन है। कल आपने क्रोध त्याग के ऊपर बात सुनी। क्रोध के बाद आता है मान। आज आप लोग उपाध्याय श्री के मुख से मान को छोड़ना चाहिए उसके विषय में सुना। उसी को लेकर के चार शब्द मैं भी कह दूंगा आपको। मान तो सब भगवान महावीर की फैक्ट्री से निकला हुआ है, चाहे किसी दुकान पर बिके माल तो वही है, दूसरा माल नहीं। हो सकता है बोर्ड दूसरा लगा हो, मार्का दूसरा लगा हो, लेकिन माल वही है भगवान महावीर के शासन का। तो हमें यही समझना है अपनी आत्मा की पवित्रता। भव्य आत्माओं, आत्मा की पवित्रता ही श्रेष्ठ उत्तम धर्म है। मनुष्य भाव पाकर के, जैन शासन पाकर के जिसने आत्मा के अंदर पवित्रता नहीं लाया तो उसका मनुष्य भाव पाना, जिन शासन पाना व्यर्थ है। हमें कैसे भी प्रयत्न से कुछ भी करना पड़े, कितने भी संघर्षों का सामना करना पड़े, किसी भी रीति से आत्मा के अंदर पवित्रता आ जावे, हमारी आत्मा सरल बन जावे, हमारी आत्मा के अंदर विवाह परिणत रूप करने वाला परिणमन क्रोध मान माया लोभादिक जो भी हैं सब आत्मा से दूर हट जाएं। मनुष्य को पाकर के यही हमें प्रयत्न करना है, नहीं तो मनुष्य भाव मिलना और न मिलना दोनों बराबर हो जाएगा। मनुष्य भाव तुम्हारे हाथ से वापस निकल जाएगा। कितना प्रयत्न करने पर भी तुम्हें यह वीतराग शासन नहीं मिल सकता, यह जिन धर्म नहीं मिल सकता। ये जिन धर्म के अंदर भगवान महावीर के द्वारा बताई हुई जो बातें हैं वह तुम्हें नहीं मिल सकती। किसी भव का कोई विशेष पुण्य है, तुम्हें ये जिन शासन मिला, जिन धर्म मिला, भव्यात्माओं जिन धर्म पा करके आत्मा की पवित्रता कर लो, प्रयत्न करो। मात्र इसी धर्म के अंदर ये साधन है, दूसरे धर्म के अंदर आत्मा को मलिन करने वाली बातें ही तुम्हें मिलेगी, आत्मा को पवित्र करने वाली बातें नहीं मिल सकती। तुम्हारा महान पुण्य का उदय है। मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर इस प्रकार की परिणति है, सुन लेते हो, इस कान से सुन लिया, इस कान से निकाल दिया। कल भी मैंने आपको कहा था कि आपने जीवन के अंदर 50-50, 60-60, 20-20, 40-40 दस लक्षण पर्व मनाए होंगे, और दस लक्षण पर्व के अंदर आपने उत्तम क्षमा मार्ग आदि की बातें सुनी होगी। हमारा ग्रस्त जो है ना, उसको तो बहुत काम रहता है, दुकानदारी, दुकान खोलना, रोटी बनाना, तो वो तो देर से आवे तो एक अलग बात है, लेकिन हमारे शरीर के नंगे धड़ंगे जिनको कोई काम ही नहीं, और वो भी एक एक तपके और बीच में डिस्टर्ब करे, तो बड़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन ये काल ही ऐसा है, कुछ समझ में नहीं आता हमको क्या कि धंधा क्या है, व्यापार क्या है। हाँ, क्यों नहीं गुरु के आदेश का पालना करते, बड़ा सोचने की बात है। तो आप लोगों ने अपने जीवन के अंदर कई धर्मों के उपदेश सुने होंगे, अभी तक आपका कल्याण क्यों नहीं हुआ, क्या कारण हुआ? आपने भगवान महावीर की वाणी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपने सोचा नहीं, कभी दिमाग ठंडा नहीं किया, चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा कल्याण किसमें है, हम कहां जा रहे, सोचने की बातें हैं। आज हमें मान कसाय को छोड़ने की बातें सुनना है। मान जो है जीव को नीच गति ले जाता है, मान कह लीजिए, अहंकार कह लीजिए, घमंड कह लीजिए, आप लोग अपनी अपनी भाषा में कुछ भी कहते हैं। जो जीव मान अहंकार घमंड करता है, उसकी आत्मा की पवित्रता नष्ट हो जाती है, वह पतन की ओर चला जाता है, त्रिंश पर्याय में चला जाता है, उसको सदगति कभी प्राप्त नहीं होती। मनुष्य मान किन किन बातों में करता है? ज्ञानी कहता है, मैं ज्ञानी हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे आगे दूसरा कोई कुछ जानता नहीं, ज्ञानी ज्ञान का अहंकार करता है। उच्च कुल वाले हैं, वो कहता है मैं ब्राह्मण हूं, एक बोलता है मैं क्षत्रिय हूं, एक बोलता है मैं वैश्य हूं, जाति का अहंकार करेगा। कुल का अहंकार करने वाला कहता है मैं अमुक अमुक कुल के अंदर पैदा हुआ हूं, क्या जानते हो तुम लोग, नीचे बैठो, कुल का अहंकार करता है। तप का अहंकार करने वाला अपने को 4-10 उपवास आदि करके कहता है मैं सबसे बड़ा तपस्वी हूं, दूसरे मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, चुप बैठो। बल का अहंकार करने वाला कहता है मैं सबसे ज्यादा शक्तिमान हूं, मेरे अंदर कितनी शक्ति है, एक मुक्का मारूंगा 10 पापड़ फूट जाता है, इतना मेरे अंदर शक्ति है, उखाड़ करके पछाड़ दूंगा, उठा करके फेंक दूंगा, आ जाओ मेरे सामने कर लो, सामना कर लो, ताल ठोक करके खड़ा होता है। बल की शक्ति वाला, रिद्धि की शक्ति वाला, छोटी मोटी कोई सिद्धि हो गई, छोटी मोटी कोई रिद्धि प्रकट हो गई, तो क्या कहता है मैं सब कुछ, ध्यान रखना मेरे से डरते रहना, नो तो मैं अपनी रिद्धि का प्रयोग कर दिया तो सब समाप्त कर दूंगा, अहंकार करता है। आचार्यों ने 8 प्रकार के मत बताए हैं, लेकिन ये 8 प्रकार के मत जो है जीव धारण करता है, आत्मा से चित होकर के अपनी आत्मा को पवित्र थी उसको अपवित्र करके अहंकारी बन जाता है। अहंकारी बन जाने के बाद जीव का कभी उत्थान नहीं होता, वह पतन की ओर ही चला जाता। हमें जो कुछ भी क्रिया करना है, भगवान महावीर की वाणी के अनुसार जो भगवान महावीर ने अपने उपदेश में बताया, व्रत संयम जप तप नियम आदि जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं उनको हमें करना है, अनुव्रतादिक पालन करना है, महाव्रतादिक हमें पालन करना है। काय के लिए काल पालन करें, आत्मा की पवित्रता के लिए, आत्मा का पतन की ओर नहीं आत्मा के उत्थान की बात करें। जब भी हमारा परिणाम अहंकार के रूप में नहीं आवे, मान रूप में नहीं आवे और मार्दव की ओर हमारे परिणाम रहे, ऐसा कहा है सरल स्वभावी होए ताकि घर बहु संपदा। जो सरल स्वभावी होता है उसी के घर सारी संपदा होती है, और जो मानी है जो अहंकारी है उसका जो क्या है कोई संपदा नहीं होती। उसकी संपदा जितनी भी होती है वह सब नष्टता को प्राप्त हो जाती है। रावण शस्त्रागार में बैठा हुआ है, युद्ध की तैयारी में है, कवच को धारण किए हुए हैं, बहुरूपणी विद्या को सिद्ध करके ये मन में धारणा बनाया हुआ है आज मैं युद्ध की समाप्ति कर दूंगा, मैं अजेय हो गया, मेरे पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, राम को आराम कर दूंगा, सुग्रीव को निग्रीव कर दूंगा, राम की सेना के अंदर जो कुछ है सब नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तैयारी में है, मंदोदरी भयभीत है, मारीची मंत्री को कहती है अरे मारी मंत्री तुमने क्या आरंभ कर रखा है, पुत्र बंदी गृह में, जेठ बंदी गृह में, देवर बंदी गृह में, इंद्रजीत कुंभकर्ण मेघनाथ पिता मैं आदि सब रावण राम के पक्ष में बंदी गृह में पड़े हुए, लंका का विनाश सामने है, भगवान की वाणी है, दिव्यों दिव्य धनियों की वाणी है कि एक नारायण पति नारायण को मार देता है, तुम क्यों नहीं रावण को समझाते। रावण हटक रही है, रावण की बुद्धि मति पर आवरण पड़ गया, जाके समझाओ। वह मारीच मंत्री कहता है कि हे महादेवी मैं क्या कहूं, परोक्ष में प्रत्यक्ष में अनेक प्रकार से मैंने राजा रावण को समझाया, लेकिन वह महाअहंकारी ये मानता नहीं किसी की बात, अपने आप को सब कुछ समझता है। हम सब हार चुके, अब तुम समझाओ। रानी मंदोदरी सिंहासन से उठ करके तुरंत आयुधशाला में पहुंच गई, रावण के सामने अपनी साड़ी का पल्ला फैला करके और कहती है नाथ पति भिक्षा तुम्हें किसी को भी खाली नहीं छोड़ा, तुम्हारे द्वार पर जो कुछ है जो कुछ मांगा तुमने दिया, मैं तुम्हें पति भिक्षा मांगती हूं तुमसे, आज मुझे देना है कहीं मेरा सुहाग उजड़ नहीं जाए। रावण भयभीत मंदोदरी को देखकर अपने हाथों से उठाता है और कहता है प्रिय प्राण प्रिय
तुम इतनी भयभीत क्यों हो? अरे मेरा नाम रावण है, मैं अजय हूं, मुझे कोई नहीं जीत सकता। फिर बहुरूपिणी से विद्या सिद्ध मुझे हो गई, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? और त्रिकर्णापति रावण की महापत्नी पटरानी, वह इतनी भयभीत? भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। तब वह मंदोदरी नाना प्रकार के शब्दों से समझाती हो कि रे रावण एक बात बताओ, मैं विद्याधर राजा की बेटी हूं, विद्याधरणी हूं, और सीता जो है भूमि गोचरी की बेटी है, उसके अंदर तुमने ऐसी क्या सुंदरता देखी, ऐसी कौन सी विशेषता देखी जिसके ऊपर आसक्त होकर के मरने के लिए जा रहे? मैं विद्याबल से तुमको तो सोदर मित्र की सची का रूप बना सकती, तुम्हारी मनपसंद का रूप बना सकती। नाथ तुम अपनी हट छोड़ दो, सीता को छोड़ दो, तुम नहीं जा सकते, सीता मुझे सौंप दो, मैं जाकर के स्वयं राम को सीता सौंप करके आऊंगी, और तुम्हारे बंदी गृह में पड़े हुए बंधु लोग हैं उनको छुड़ा करके ले आऊंगी। राम समझदार है, अवश्य मेरी बात को स्वीकार करेंगे। तब रावण कहता है, प्राण प्रिय तू जो कहती है बिल्कुल ठीक है, मैं जानता हूं पर स्त्री के ऊपर आसक्ति नरगति का कारण है, लेकिन युद्ध प्रारंभ है और इसमें संधि की क्या बात, अगर मैं सीता को वापस कर देता हूं तो जगत के लोग कहेंगे कि रावण भयभीत होकर के सीता को वापस कर दिया, युद्ध को विराम दे दिया। एक बात हो सकती है, तू घबराए मत, मैं राम को युद्ध भूमि के अंदर जीतूंगा और लंका में सम्मानपूर्वक सीता को वापस दे दूंगा, लेकिन पहले रावण को, राम को जीतूंगा, नहीं तो मेरे अहंकार को धक्का लगेगा। चला गया युद्ध भूमि में। आप जानते हैं चक्र रत्न लक्ष्मण के ऊपर फेंक दिया रावण ने, चक्र रत्न जाकर के लक्ष्मण की तीन प्रदक्षिणा लगा करके लक्ष्मण के हाथ में हो गई। लक्ष्मण कहता है, रावण अब क्या, सिर पे एक बार बोल दो, मैं राम का किंकर हूं, सीता को सौंप दो, कह दो कि राम का किंकर हूं, तुम्हारी लंका तुम्हारे पास, हम लोग सीता लेकर के वनवास के अंदर रहेंगे, फल फूल खाएंगे, हमें तुम्हारी लंका से कुछ लेना देना नहीं है। वो कह क्या कहने लगा रावण, हे शूद्र, छोटी सी विभूति को पाकर के अहंकार को प्राप्त होता है, चक्र रत्न सही तुझे उठा करके और अभी समुद्र में फेंकता हूं। इस प्रकार जब वो अहंकार की बात करता है, लक्ष्मण ने चक्र रत्न घुमाया और छोड़ दिया रावण के ऊपर, रावण को धराशायी कर दिया। मात्र रावण के अहंकार ने सोलक पूत सवालक नाती जाके घर में दिया अनबाती। आप सब भी रावण ही तो है ना, क्या आपका गर्दन कट जाएगा, लेकिन ये क्या बोलता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरी नाक नहीं जाने दूंगा, और जितनी भी धार्मिक क्रियाएं सब नाक के लिए है, मान के लिए है। कवि ने कहा, मान बड़ाई कारणे जो धन खर्चे मूड, मरकर हाथी होएगा आगे लटके सून। ये हाथी होते हैं ना जितने भी, वह हाथी क्यों होते हैं, जो अहंकारी विशेष होता है वह मर करके हाथी की पर्याय में चला जाता, उसकी नाक इतनी लंबी होती है कि जमीन पर लटक जाती है। पद्म पुराण का एक आख्यान मुझे याद आ रहा है, त्रिलोक मंडन हाथी रावण ने वश में किया था। रावण को मार करके विभीषण ने वत्लोक मंडन हाथी राम को भेंट कर दिया, अयोध्या लेकर के आए। कुछ दिन बाद लोक मंडन हाथी अयोध्या में रहा। एक दिन मदोन्मत होकर के खंभा को तोड़कर स्वतंत्र स्वच्छंद विचार विचरण करने लगा, नगर में हाहाकार मचने लगा। दौड़ रहा है और सामने जब भरत को देखा तो भरत को देखते ही शांत हो गया और भरत के चरणों में जाकर के बैठ गया। भरत उस हाथी के सिर पर हाथ फिरा करके उसको संतोषित करके वापस राज में लेकर के आया। उसके बाद उस हाथी ने खाना पीना सारा छोड़ दिया और आंखों से आंसू गिरता है और अपनी सुंड को बार बार जमीन पर पछाड़ता है। महावत लोग जाकर के राम को कहने लगे, राम यह तुम्हारा त्रिलोक भूषण त्रिलोक मंडन हाथी जिस दिन भरत को देखने के बाद शांत हुआ, एक महीना हो गया उसने खाना छोड़ दिया, प्रतीक्षण आंखों से आंसू झरे और नाना प्रकार के उपाय करने पर भी वह शांत नहीं हो रहा। उसके मन में क्या है कुछ समझ नहीं सकते हैं। तब राम ने सोचा क्या किया जाए। रात्रि के पिछले पहर में उसी नगर के अंदर एक मुनिराज को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। चतुर्निकाय देव पधारे। प्रातः काल राम भी अपने नगरवासियों से सहित समोसरण में जाने गंधकुटी में जाने के लिए तैयार हुए। वह हाथी भी स्वयं में उठ करके राम के आगे आगे जा रहा है। पहुंचे वहां भगवान का उपदेश सुना। राम भगवान को हाथ जोड़ करके कहते हैं, भगवान यह त्रिलोक मंडन हाथी एक महीने से कुछ भोजन वगैरह नहीं करता, क्यों तो ये खंभा तोड़ करके भागा? भरत को देख करके क्यों शांत हुआ और एक महीने से इसने खाना पीना क्यों छोड़ा? इसके भावांतर सुनना चाहता हूं। तब जो है भगवान केवली कहते हैं, राम ये जीव की इसी प्रकार की दशा है। जीव नाना प्रकार की अपनी स्वयमेव की भूलों से स्वयमेव दुखी होता है, उत्थान और पतन चलता रहता है। यह त्रिलोक मंडन हाथी और भरत का जीव ये दोनों कई भवों से परस्पर में मित्र हैं। आदिनाथ तीर्थंकर के काल में मारीची के भ्रमाए ये भरत और त्रिलोक मंडन हाथी का जीव, चंद्रोदय और सूर्योदय नाम के दो राजा आदिनाथ भगवान के साथ में दीक्षित हुए, लेकिन मारीची के भ्रमाए भ्रम करके मिथ्यात्म में पड़े और नाना प्रकार के भवांतरों में घूमे। और अब जो क्या है यहां पर भी एक त्रिलोक मंडन हाथी हुआ और एक जो क्या है भरत हुआ। भगवान कह रहे हैं ये दोनों ही पूर्वभव में राजकुमार थे और मुनिराज का संपर्क मिला, निमित्त मिला, उनका उपदेश पाकर दोनों ही दीक्षित हो गए, घोर तपस्या करने लगे। ये त्रिलोक मंडन हाथी का जय मृदुमती नाम के मुनि थे। अयोध्या के उद्यान में चातुर्मास के लिए चार महीने का उपवास धारण करके खड़े हुए। एक मुनिराज उन्होंने चातुर्मास किया, चातुर्मास समाप्त हुआ, आकाश चार निर्देश से आकाश मार्ग से चले गए। ये मृदुमती नाम के मुनि दूसरे जंगल में कहीं थे, वह उसी स्थान पर आकर के खड़े हो गए, ध्यान में लीन हो गए। अयोध्या वासियों ने विचार किया, हमारे नगर के उद्यान में 4 महीने का उपवास धारण करके महामुनिराज विराज रहे हैं, मुनिराज के चरणों की सेवा करके आएंगे। सबके सब लोग नाना प्रकार की सामग्री को लेकर के मुनिराज के चरणों में पहुंचे। 4 महीने का उपवास करने वाले मुनिराज तो वहां से बिहार कर गए, लेकिन ये त्रिलोक मंडन हाथी का जो जीव मृदुमती नाम के मुनि थे, वह उस स्थान पर आकर के खड़े हो गए थे। लोग जाकर के उनकी पूजा कर रहे, इनको मालूम पड़ गया कि मैं वो नहीं जिसकी ये पूजा कर रहे। अगर मैं इनको कह दूंगा ये लोग पूजा करना छोड़ देंगे, मात्र इतना ही उनके मन के अंदर आया, पूजा की चाह रही। लोग पूजा करके चले गए। इन्होंने अपनी जो अंदर आने वाली परिणति है उसको गुरु के पास जाकर के निवेदन नहीं किया, उसका आलोचना और प्रतिक्रमण प्रायश्चित नहीं किया, तपस्या की। उसके कारण 6ठे स्वर्ग में जाकर के दोनों जने पैदा हुए, भरत का जीव और वो। लेकिन वह मुनिराज के अंदर रहने वाली मेरी पूजा, बस इतनी कथाएं ने उनको तिरंच पर्याय का बंद करा दिया। और एक मुनि का जीव तो भरत हो गया, और एक मुनि का जीव मृदुमती मुनिराज का जीव जो क्या है वह मर करके त्रिलोक मंडन हाथी हुआ। भव्यात्माओं, आपको सोचने की बात है, जिसने अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग कर दिया, घरवार सुख सामग्री सबका त्याग करके मुनि हो गए, और मुनि होने के बाद भी अगर क्षणिक परिणाम इस प्रकार के आए, उस क्षणिक परिणाम ने मुनि पद से उनको विचलित कर दिया, मनुष्य भजभाव से विचलित कर दिया, और उसको तेज पर्याय में ला करके धर दिया। और जो रात दिन मान कसाय के अंदर आविष्ट भरे हुए हैं, मान कसाय को छोड़ते नहीं, जहां पर भी जाए वहां अपनी ही बात, ज्ञानी कहता है ज्ञानी, आचार्य कहता है मैं आचार्य हूं, धनवान कहता है मैं धनवान हूं, बलवान कहता है मैं बलवान हूं, रूपवान कहता है मैं रूपवान हूं, मेरे सामने दूसरा कुछ भी नहीं। समझ में आया आपको? ये सब क्षणिक, आपका रूप कितने समय रहेगा, आपका बल कितने समय रहेगा, आपका ज्ञान कितने समय रहेगा, आपका तप कितने समय रहेगा, आपकी रिद्धि कितने समय रहेगी, कुछ नहीं कह सकते। परिणामों के अंदर गलत आया, परिणाम तुम्हारे उस रूप हुए, परिणाम के अंदर अहंकार आया कि तुम्हारा ज्ञान बल रिद्धि नाना प्रकार का जो भी कुछ है सब भस्म सात हो जाएगा। वापस कहां खड़े हो जाओगे? चलते चलते गए, 100 सीढ़ी तक पहुंच गए, और क्षणिक परिणाम आया तो फिर वापस पहली सीढ़ी पर। भव्यात्माओं, हमें पूरा ध्यान रखना है। नारायण श्री कृष्ण का सभा लगी हुई है, राजाओं में एक चर्चा चली, बड़े बड़े योद्धा यदुकुल में, कौरव कुल में हैं, यदुकुल में हैं, और जिसमें भोजवंशी अंधक प्रश्न बस्ती आदि आदि बड़े बड़े कुल वाले जाति वाले इस सभा में बैठे हुए हैं, और जिन्होंने अपने जीवन में बड़ा से बड़ा काम किया है, नारायण श्री कृष्ण तक बैठे हुए हैं, स्वयं नेमिनाथ तीर्थंकर सरी के बैठे हुए हैं, इसमें सबसे बड़ा बलवान कौन? बलवानों की चर्चा चली, कोई कहने लगा वसुदेव बलवान, कोई कहता समुद्र विजय, कोई कहता उग्रसेन, कोई क्या अपनी अपनी जो है दृष्टि से सब लोग कहने लगे। बलदेव ने कहा अरे मूर्खों, जहां तीन लोग का हाथ निमिनाथ श्री का विराजमान हो, उनके सामने किसी की कोई शक्ति नहीं, सबकी शक्ति उससे क्षीण है। यह बात नारायण श्री कृष्ण को अंदर घरी करी और सोचने लगे कि निमिनाथ मेरे से भी बलवान है। खड़े हो गए सिंहासन से, निमिनाथ को कहने लगे भाई आज तुम्हारे हमारे बल की परीक्षा कर ली जाए, सभा में परीक्षा हो जाए। निमिनाथ कहने लगे भैया काय को चक्कर में पड़ता है, तू बलवान है, तू त्रिखंडाधिपति है, तेरे सामने चक्रवर्ती, तू तेरे अपना सिंहासन पर बैठा रहे, राजकार्य चला, व्यर्थ की बातों से क्या लेना क्या देना। नहीं नहीं